नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विस्तार, जिसे लिखा है सुमन वाजपेयी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। जीवन के चौथे पहर में अकेलेपन का दंश झेल रही मिसेज पानिदिकर के लिए घर में लड़कियों को पेइंग गेस्ट के रूप में रखना ठंडे हवा के झोंके के समान था। उनके मन की खुशी कितना विस्तार पा सकी, आइए सुनते हैं। जब से उनके घर से कुछ दूरी पर एक इंस्टीट्यूट खुला है, तब से ही जैसे उनकी जिंदगी के सुर बदल गए हैं। उनकी वीरान ठहरी हुई जिंदगी में एक हलचल मच गई है। यह हलचल शांत जल में फेंके गए किसी पत्थर के समान नहीं है जो लहरों को भंवर बना देता है। यह तो दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल चक्कर काटती किसी बच्ची की खुशी जैसी है। ठहरा हुआ जीवन फिर से चलने लगा, गति आ गई मानो। मन पर सुकून ही नहीं, फुहारे छिड़काव कर रही हैं। अब तक का रुका हुआ पानी जिसमें धीरे धीरे काई जमने लगी थी, एक अंतराल के विराम को पीछे छोड़ पुलकित हृदय से आगे बढ़ चली। विस्तार की चाह हर किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विस्तार चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, जीवन में एक ललक बनाए रखता है। पर मिसेज पानिंदकर को अपनी लंबी चौड़ी कोठी का विस्तार, जो कभी उनके लिए गर्व का विषय था और सुख की छांव हुआ करता था, उन्हें मुंह चिढ़ाता प्रतीत होता था। विस्तार उन्हें खलने लगा था। एक ही कमरे में उसका सारा दिन गुजर जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती और कमरों में झांकने की। पिछले 2 बरस से अपनी 2 फ्लोर की कोठी में अकेली रह रही है मिसेज पानिंदकर। पति 2 बरस पहले जिंदगी के बिहड़ में अकेला छोड़ गए। अपनी मृत्यु के समय वह इस बात से आश्वस्त थे कि मिसेज पानिंदकर की कभी भी स्वयं को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। इस कोठी के अलावा बैंक में उनके नाम काफी पैसा भी जमा था। बेटा पिता की मृत्यु पर अंतिम संस्कार का फर्ज निभाने आया जरूर था, पर उसके बाद हफ्ते में एक बार फोन करे या मोटी रकम भेजकर निश्चिंत हो जाता था। बेटी 6 महीने में एक बार उनसे मिलने आ जाती। आखिर अब उसकी भी गृहस्थी है जिसे माँ के लिए जब तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए मिसेज पानिदकर की अकेली रहती थी। अकेले रहने की आदत हो नहीं जाती, डालनी पड़ती है विकल्प के ना होने पर। वे नीचे के फ्लोर पर रहती थी। ऊपर का फ्लोर तो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। कुछ परिचित उसे किराए पर देने या बेचने की बात कर चुके थे, पर वही राजी नहीं होती थी। बेचने का तो सवाल ही नहीं था, किराए पर देते हुए डर लगता था। किराएदार ने घर खाली नहीं किया तो 50 जो मिले, फिर विश्वास किस पर किया जाए। इस उम्र में वह किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, परिचित सभी समझाते कि इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं। कितने केस हो रहे हैं आजकल, हत्या, चोरी, बुजुर्गों को तो इजी टारगेट है, लेकिन वे अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के चक्कर में किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। उसी दिन बाजार गई थी। हमेशा तो वे फोन करके सामान मंगवा लेती थी, बहुत दिनों से घर से निकली नहीं थी, इसलिए दोपहर में सोचा कि खुद ही सामान देख परख कर ले आया जाए। फरवरी की धूप भी शरीर को सुहा रही थी और चलने से घुटनों के दर्द को भी थोड़ा आराम मिल रहा था। अब से दिन में एक बार तो घर से बाहर जरूर निकला करूंगी, मन ही मन उन्होंने तय किया। वैसे भी अब बड़े बड़े स्टोर बन जाने से कितना आराम हो गया, न मोल, न भाव, न तोल, न चिकचिक। हर चीज़ के रेट पैकेट पर लिखे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में सब्जियों फलों का ठीक तरह से वजन हो जाता है। ट्रॉली में बिस्कुट के पैकेट रखते हुए अचानक 2 लड़कियों की बात पर उनका ध्यान गया। इंस्टीट्यूट तो अच्छा है, लेकिन रहने की भी तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एडमिशन तो होना तय है, पर रहेंगे कहाँ? सुना तो है यहाँ पेइंग गेस्ट रखने का बहुत चलन है, वरना मम्मी तो अलग से किराए पर घर लेकर रहने ही नहीं देगी। कहते करते हैं कुछ इंतजाम, फिर इंस्टीट्यूट वाले भी तो कुछ मदद करेंगे, वरना शहर के बाहर से स्टूडेंट कहाँ आ जा पाएंगे। ठीक कह रही है तू, बात करते करते वे लड़कियाँ आगे बढ़ गई। पर मिसेज परिंदर के चेहरे पर मुस्कान छा गई। फटाफट घर आकर उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई और पड़ोस में रहने वाली शर्मा दंपत्ति की बेटी नेहा को फोन पर बुलाया। नेहा कॉमर्स की छात्र थी और बिजनेस व पैसों का लेखा जोखा रखने की उसे समझ भी थी। उसकी मदद से उन्होंने इश्तहार पर एक मसौदा तैयार किया। अगर आप पेइंग गेस्ट बनना चाहते हैं तो स्वागत है। अपना पता, फ़ोन नंबर सब लिखकर उन्होंने पैम्पलेट छपवाकर इंस्टीट्यूट के बाहर चिपका दिया। ऊपर के फ्लोर की सफाई कर बेडरूम में रखे पलंग लगवा दिए। नए पर्दे जो कब से बक्से में बंद थे लगवा कर कुछ कुर्सियाँ डलवा दी। 2 सालों से यूं ही रखे फर्नीचर से कमरा जगमगा उठा। एक फुर्ती सी भर गई थी उनके अंदर। घुटनों का दर्द ना जाने कहाँ गाफूर हो गया था। किसी अल्हड़ युवती की तरह वहाँ इधर उधर भाग दौड़ करती, अपनी काम वाली को निर्देश देती रही। सारे दिन नेहा ने घर को सजाने में, व्यवस्थित करने में उसकी मदद की। कुछ नई स्टाइल में ढालने की जरूरत थी कमरे को, फिर छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार टेबल लैंप स्टडी टेबल का भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। 2 दिन भी नहीं बीते कि 5-6 लड़कियां उनके यहाँ आ पहुँची। देखो, मेरे यहाँ 4 लड़कियों के रहने की व्यवस्था हो सकती है, इससे ज़्यादा को रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मिसेज पानिंदिकर को लग रहा था मानो उसके मन को पंख लग गए हों। वे उत्फुल्लता से उड़ रही थी। सोने घर में यो चिड़ियों की तरह चहचाने वाली लड़कियों का आगमन किसी मीठी धुन की तरह लग रहा था। आंटी प्लीज, हम किसी तरह मैनेज कर लेंगी, आप क्या रहेंगी तो मम्मी पापा हमें यहाँ पढ़ने देंगे, वरना अजनबी शहर में किस पर विश्वास किया जा सकता है। उनकी आंखों में मजबूरी और चेहरे पर छाई व्यवस्था को देख भावुक हो उठी मिसेज पानिंदिकर। सोचा खाना बनाने वाले के साथ ऊपर का काम करने के लिए एक और मेहरी रख लेगी, ठीक है, पर 6 लड़कियों से ज़्यादा नहीं। उनके चेहरे पर छाई प्रसन्नता को देख मिसेज पानिंदिकर को अपनी कोठी के विस्तार पर फिर से गर्व हो आया। सोचा बाकी कमरों को भी खुलवा कर साफ करा देंगी। नीचे के फ्लोर पर भी बेड है और पति का स्टडी रूम भी है, उसे भी खोल लेंगी, हो जाएगा मैनेज। हफ्ते भर बाद लड़कियां अपने सामान के साथ वहां पहुंची। उनके हाथ में एडवांस रख कर वे निश्चिंत हो कमरों में जम गईं। 1-2 के माता पिता भी आकर तसल्ली कर गए। उन्हें यकीन हो गया था कि मिसेज पानिंदिकर के सुरक्षित घेरे में उनकी बेटियाँ कुछ सीखेंगी ही, बिगड़ेंगी नहीं। मिसेज पानिंदिकर ने अपने एकांकीपन को स्टोर रूम में बंद कर उसमें एक मोटा सा ताला जड़ दिया था। सारा दिन कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता। सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर देने की बात हुई थी, पर लड़कियां घर में होती तो लंच भी वे खिला देती। वैसे भी वे कोई प्रोफेशनल तो थी नहीं जो गिनकर चीज़ें देती या खाना खिलाने में कंजूसी करती। धीरे धीरे उन लड़कियों और मिसेज पानिंदिकर के बीच अपनेपन का एक विशाल समुंदर आकार लेने लगा। दूरियां मिटी तो अपनी हर छोटी बड़ी बात वे उनसे शेयर करने लगी, अपने सुख दुख पर सब बड़ी सहजता से बांटने लगी, यहाँ तक कि अपने रोमांस व बॉयफ्रेंड की बातें भी बताने लगी। मिसेज पानिंदिकर भी खुले मन से अपनी ममता उन पर उडेलते उडेलते उनसे जुड़ती गई। वे जानती थी कि वे चली जाएंगी, पर फिर भी प्यार के सेतु सीमाहीन होते हैं। उन्हें तकलीफ होती तो लड़कियां उनकी सेवा में लगी रहती। वे पेइंग गेस्ट कम और बेटियां ज़्यादा बन गई थी। नीचे के फ्लोर में भी जब मन करता सो जाती, नहीं तो स्टडी रूम में अड्डा जमा लेती। मिसेज पानिंदिकर उनकी चुहलबाजियों का आनंद लेती और उनकी आँखों में पलते सपनों के सच होने का आशीर्वाद देती। सुनंदा उन सब में अलग थी, अब अपने में ही रहना पसंद करती थी और बड़ी बिंदास थी। उन्हें ज़्यादा ही उससे लगाव हो गया था। उन्हें लगता था उसके अंदर कोई उहा पोह चलती रहती है। वह खुलकर कोई बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि दूसरी लड़कियों की तरह उसने अपने घर परिवार के बारे में भी नहीं बताया था, ना ही उसके लिए कोई फोन आता था। आंटी, आप क्यों हमारे लिए सारा दिन परेशान रहती हैं, हम बच्ची थोड़ी हैं, कर लेंगे सब अपने अपने, आप वह कहती। मेरे लिए तो तुम लोग बच्ची ही हो, मिसेज पानिंदिकर प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती तो वह इतनी खूबी से उनका हाथ हटा देती कि मिसेज पानिंदिकर को पता ही नहीं चलता कि उसने उनका उस तरह का हक जताना नागवार गुजरता है। वह अपनी तरह से ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसलिए किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बनने को भी तैयार नहीं थी। पर माँ पापा की जिद की वजह से उसे मिसेज पानिंदिकर के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। पापा के पैसों से उसे कुछ हद तक मगरूर बना दिया था, जो चाहती थी करके रहती थी। लेकिन मिसेज पनिनकर का हस्तक्षेप उसे चिढ़ा जाता। कभी भाखड़वाड़ी खाओ, कभी पोहा खाओ, कभी लड्डू चखो, माई फूड, चलता फिरता रसोई घर और फिटनेस की बलि चढ़ाने वाली कसाई। बाकी लड़कियां उनसे जिस तरह पेश आती थी देखकर वो उसे बड़ी हैरानी होती थी। पैसे दे देते हैं, रहते हैं, फिर क्यों हमारे लिए सारा दिन चिंतित रहती है? जितनी पेट में जगह उतना ही तो खाएंगे, फिर क्यों जिद करती है कि और ले लो और ले लो? शायद बुढ़ापे में ऐसा होता हो, वह अक्सर सोचती। जब और लड़कियां उनसे कभी पोहा तो कभी चकली बनाने का आग्रह करती तो वह और कुड़ती। पर उसकी सोच व दुविधा से अनभिज्ञ मिसेज पनिनकर खूब शौक से अपने हाथों से हर चीज़ बना देती। अब उनको जीने का एक मकसद मिल गया था। झुर्रीदार चेहरों की लकीरों से झांकती सुख की अनुभूति और अकेलेपन को तोड़ अपनेपन की हर और बहती खुशबू ने उसकी उम्र को 10 साल पीछे धकेल दिया था। उनकी चर्चा इंस्टीट्यूट में भी इतनी फैल गई थी कि अगले सेशन के लिए एडवांस बुकिंग होने लगी। हालांकि उनके बेटे ने खूब भला बुरा कहा था फ़ोन पर। आखिर क्या जरूरत थी यह तमाशा करने की? पैसे तो मैं लगातार भेजता हूँ, मैं फिर कोई कमाई करने की सोची? अपनी रुलाई को भरसक रोकते उन्होंने फ़ोन काट दिया। पंछी जब नीड़ छोड़कर उड़ जाते हैं तो क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखते? उड़ान भरते भरते वे इतना आगे निकल जाते हैं कि नीड़ में छा सन्नाटे की उन्हें भनक तक नहीं हो पाती। महत्वाकांक्षाओं के पर उगते ही वे छलांग लगाने लगते हैं पर फूल जाते हैं। उन परों को आकार व मजबूती देने वाले माँ बाप की रिक्तता को क्या पैसा भर सकता है? वह कहना चाहती थी लेकिन चुप हो जाती। कहने का फायदा भी नहीं था, उनका दर्द तो उनकी बेटी ने भी नहीं समझा था। ध्यान रखना मम्मी, कहीं कोई आपसे पैसे ना हड़प दे, भूल कर भी किसी कागज पर साइन ना करना, आजकल की ये लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। मिसेज पनिनकर ने दुख के कांटों को कुछ पल के लिए महसूस किया, फिर मगन हो गई अपनी दुनिया में। इधर वे कुछ दिनों से देख रही थी कि सुनंदा देर से घर आने लगी थी। उसके मुंह से अजीब सी बदबू आती थी, कहीं वह शराब अपने मन में आने वाले विचारों को झटक देती। हुई वह उनसे बात करने की कोशिश करती तो वह जवाब ही नहीं देती थी। सुबह जब बाकी लड़कियां चली गई तो मिसेज पनिंदर सुनंदा के कमरे में गई। वह ब्रेकफास्ट भी करने भी नहीं आई थी, इसलिए चिंता होना स्वाभाविक था। वह सो रही थी, उसके माथे को छुआ तो उसे तेज बुखार था। काम वाले से उन्होंने बर्फ का पानी मंगवाया और उसके माथे पर पट्टियां की। फिर फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने दवाई दी और हल्का भोजन खाने की सलाह दी। मिसेज पनिनकर फटाफट सूप बना लाई, कभी दलिया कभी खिचड़ी। सुनंदा चुपचाप बिना विरोध किए खाती रही। उसके कपड़ों को रखने के लिए अलमारी खोली तो उसमें शराब की बोतलें देखकर वे सकते में आ गई। क्या तुम्हारे घर फोन कर दूं? क्यों, क्या मैं मरने वाली हूँ? कटुता से सुनंदा ने जवाब दिया, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वैसे आपको मेरी जो हेल्प की उसके लिए थैंक्स। आप चाहे तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकती हूँ। वैसे मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी रिश्ते में यकीन नहीं रखती। मेरे माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका है और मैं उनसे नफरत करती हूँ। दोनों के पास बहुत पैसा है, मौज मस्ती ऐश से ज़िंदगी बिताने में विश्वास करती हूँ। वैसे भी वे दोनों कौन से दूध के दूल्हे हैं, अपनी खुशी से उन्हें मतलब है। एनीवे, मैं अब ठीक हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बाजार से मंगा लूँगी। उसका इशारा समझ मिसेज पनिनकर थके कदमों से बाहर आ गई। सुनंदा के अंदर समाई कटुता और तेवर की वजह तो उन्हें समझ में आ गई थी, इसलिए उसके लिए और अधिक ममता उनके मन में उमड़ने लगी। कैसे इस बच्ची के मन में प्यार और विश्वास के बीज अंकुरित करें, इसी उधेड़ बुन में भी लगी थी। सुनंदा दो दिन बाद इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसके कमरे में गई। दो लड्डू उसके सामने रखते हुए बोली, प्रसाद है, खा लो। वैसे एक बात कहनी थी, बहकना बहुत आसान है बेटी, पर संभलते संभलते पूरी जिंदगी लग जाती है। वैसे भी हर रिश्ते में ही कैक्टस उगाए यह जरूरी तो नहीं, नरम कपल की चुभन भी महसूस की जा सकती है। केवल जरूरत होती है नजरिया बदलने की। आप मुझे लेक्चर देने आई हैं? उसकी रुखाई और बदतमीजी को एक बेटी के दर्द के रूप में सहन करते हुए मिसेज पानिंदकर ने कहा, तुम्हारी अलमारी में? आपने मेरी अलमारी में हाथ लगाया? हाउ डे यू? देखिए मिसेज पानिंदकर, यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ रहूँ, जो चाहे करूँ। माना कि यह घर आपका है, पर यहाँ रहने का मैं आपको पैसा देती हूँ ना? सुनंदा भड़क उठी। बुखार की कमजोरी उसके शरीर से अभी तक गई नहीं थी, इसीलिए तेजी से बोलने के कारण उसके चेहरे और माथे पर पसीना आ गया। लेकिन बेटा, मैं तो बस तुम्हें, नहीं, मुझे समझाने की कोशिश ना करें। अपने को नियंत्रित कर पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। उसकी हालत देखकर मिसेज बनकर को लगा कि कहीं उसे फिर से बुखार तो नहीं आ गया। उसके माथे को छूने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया था कि सुनंदा ने बड़ी बेरहमी से उनके बढ़ते हुए हाथ को थामते हुए कहा, मेरी बाँ बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेज बनिंदकर, ये मेरी लाइफ है, अपने जीवन की दखल अंदाजी का अधिकार मैं अपनी माँ को भी नहीं देती। थके कदमों से खुद को घसीटती हुई जब मिसेज बनकर फर्स्ट फ्लोर पर आई तो अपने घुटनों में उन्हें तीव्र दर्द महसूस हुआ। अपने कमरे को बंद कर वह बिस्तर पर बैठ गई। बेड के ठीक सामने लगे शीशे में उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। खुशी की लहरें बहते बहते थम गई थी। उन्हें लगा सारा विस्तार उनके इस कमरे में सिमट गया है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बहुत कठिनाई से उन्होंने अपने को संयत किया, वह किसी के भी सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। दरवाजा खोला तो देखा सामने मिताली खड़ी थी। यह क्या, इस वक्त दरवाजा क्यों बंद कर बैठी है? तबीयत तो ठीक है ना? एक बार तो जो बोलना शुरू करती है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। खैर, मैं तो यह बताने आई थी कि सुनंदा यहाँ से चली गई है। मैंने तो आपसे मिलने के लिए कहा, पर उसने मुझे ही आपको बताने का काम सौंप दिया। चिंता ना करें, वह ऐसी ही है। अच्छा, यह तो बताइए, आप रो क्यों रही हैं? लाख छुपाने पर भी उनकी आंखों में तैरती नमी को उसने देख ही लिया था। बस ऐसे ही बेटी की याद आ गई थी। अरे, हम हैं ना आपकी बेटियाँ, नाहक को दुखी हो रही हैं। चलिए फटाफट कुछ खिला दीजिए, बड़ी भूख लगी है। वैसे मैं आपको माँ कहूँ तो चलेगा? दौड़ेगा, वह उत्साहित हो उठी। कमरे से निकल कर वह फौरन किचन की ओर बढ़ी। अच्छा बोलो, क्या खाओगी? पोहा। मैं तो मिर्ची वड़ा खाऊंगी, नीरा ने भी जल्दी से वहीं अपना बैग रखते हुए कहा और मिसेज पनिंदर के गले से झूलते हुए बोली, आप बहुत अच्छी कुक हैं आंटी। आंटी नहीं, यह तो मेरी माँ है, पहले मेरे लिए पोहा बनाएगी, मिताली ने उसे चढ़ाया। नहीं, मेरे लिए पहले वड़ा बनाएंगी, है ना माँ? नीरा की आंखों में उनके लिए बहुत सारे आदर्श के साथ प्यार भी झलक पड़ा। उन दोनों की टिटोली देख मिसेज पनिंदर को उस समय लग रहा था मानो जीवन कमरे तक ही बंद नहीं कर सकता, वह तो निरंतर विस्तार पाता रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।